اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں ایک مرتبہ بھی خدا مند عالم کہہ سکتا تھا کہ دو مرتبہ ہم کو تاکید کی گئی, اور احادیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ, اس کی نماز ہی نہیں ہوتی کہ جو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کرے. تو ہم ان دو آیات کا جو پیغام ہے اور جو مفہوم ہے اس کو جتنے دن ہم ان پانچ دنوں میں آپ کی خدمت میں ہیں, بلکہ پانچ راتوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اور ان آیات کا جو ہم نے انتخاب کیا ہے, اس انتخاب کو کرتے وقت جو ہمارے ذہن میں بات تھی وہ ایک موضوع تھا, ہم اپنی اس گفتگو کو اس موضوع کے ذیل میں قرار دے سکتے ہیں. اور وہ موضوع تھا کربلا صراط مستقیم، یعنی وہ سیدھا راستہ کہ جس کو ہم ہر نماز میں دو بار اللہ سے طلب کرتے ہیں. کربلا سے پہلے جو کچھ بھی ہوا ہو، کربلا کے بعد جتنی بھی اسلام کی شکلیں بنائی گئیں، جتنی بھی اسلام کے چہرے بنا کر لوگوں کو دکھائے گئے، اور ہر چہرہ بنانے والے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں جو اسلام بتا رہا ہوں وہ صحیح اسلام ہے، لیکن ہم ان پانچ دنوں میں آیات قرآن اور فرامین اہل بیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کریں گے کہ واقعہ کربلا کے بعد وہ اسلام جسے قرآن صراط مستقیم کہے، وہ اسلام ہے جو کربلا والوں نے بچایا تھا. اور دیگر جو اسلام کی شکلیں بتائی گئیں اور جو دیگر تفسیریں کر دی گئی قرآن کی، وہ تفاسیر برحق نہیں. تو ہم نے ان دو آیات کا انتخاب کیا. ان دو آیات کے ترجمے کی طرف آنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کروں کہ جو انشاءاللہ مددگار ہوگا ہم لوگوں کے لیے اپنی نمازوں کو مزید بہتر بنانے. سورۃ النساء کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہ جب شراب کے حرام ہونے کی، منع ہونے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا. توجہ فرمانا، تین مرحلوں میں شراب کی حرمت کا حکم فائنل ہوا تھا. پہلے مرحلے میں جو آیت اتری تھی وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وہاں فرمایا گیا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے رسول یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے رسول ان سے کہیے کہ ان دونوں چیزوں میں، شراب میں اور جوئے میں، اثم کبیر بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. شراب کا کیا فائدہ؟ عارضی طور پر انسان بڑا نشے کی حالت ہو، مستی کو انجوائے کرتا ہے. جوئے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ بندے کے پاس بغیر کچھ کیے ہوئے بہت سارا مال نسل جیت کر، جوا جیت کر اس کے پاس آ جاتا ہے. لیکن وہاں اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے ان کے منافع سے. اور جب بھی شریعت اسلام میں ایسی چیزیں آ جائیں کہ جن کی خرابی بہت زیادہ ہو ان کے فائدے کے مقابلے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے منع فرما دیتا ہے شریعت اسلام. یہ پہلی آیت. دوسری آیت وہ ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. یہ دوسری آیت نازل ہوئی. فرمایا اے ایمان والوں، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تمہاری حالت کون سی ہو؟ نشے کی حالت، اس میں نماز کے قریب نہ جاؤ. پھر سبب بتایا، توجہ فرمائیں گے، پھر سبب بتایا کیوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب تم نے نہیں جانا. اصل سبب نشہ نہیں تھا، اصل سبب کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا حتی تعلم ما تقول، اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تمہاری نشے کی حالت ختم نہ ہو جائے اور تم ہوش و حواس میں نہ آ جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چلنے لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اللہ سے. توجہ فرما، تم خدا سے کیا کہہ رہے ہو؟ अब आप शराब वाले मसले को हटा दें, इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए कि अब शायद ही कोई मिले जो शराब पी के और नमाज पढ़ने चला जाता हो, ठीक है। तो शराब तो नहीं है, लेकिन जो सबब अल्लाह ने बताया था कि नशे की हालत में ना जाओ नमाज के करीब, वो सबब आज भी मुसलमानों में पाया जाता है। तवज्जो फरमाएं, फिक्र करें, वो सबब क्या है कि नमाज पढ़ रहे होते पता नहीं होता क्या कह रहे हैं अल्लाह से। यानी इस आयत मुबारका में असल मकसद शराब को कंडेम करना नहीं था, नशे को कंडेम करना नहीं था, बल्कि असल मकसद ये था कि अल्लाह की बारगाह में आने का अदब ये है कि तुम्हें पता तो हो कि खुदा से क्या बात करो। आप अगर दुनिया में भी मिसाल के तौर पर कोई शख्स हो जो ज़रा मालदार हो या किसी ओहदे सीट पर बैठा हुआ हो और मुझे उससे कोई काम पड़ जाए, आपको उस किसी से काम पड़ जाए और आपका मसला हल कर सकता हो, आप परेशानी में हो, आप उसके पास जाएं उसके दफ्तर में मिलने के लिए, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप उससे बात कर रहे हो और आपको पता भी ना हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। या आप उसके साथ बात करने के लिए जाएं और मसलन उससे बात शुरू करें कि जी मुझे एक बहुत अहम मसला दरपेश है, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद कभी आप सर को खुजली करें, कभी पीछे मुड़ कर मसलन देखें, कभी टांग को खुजली शुरू कर दें, फलान करें, तो वो आपसे कहेगा कि यहाँ से निकलो, गेट आउट। और जब तुम्हें बात करने का अदब आ जाए कि जिससे काम पड़े उससे बात कैसे करनी होती, उसके बाद दोबारा इस दफ्तर में आने का नाम लेना, वरना खबरदार आइंदा इस दफ्तर में तुम्हारी शक्ल न देखो। खुदा कितना करीम है कि हमारी इन बाज़ोकात बेअदब नमाजों के बावजूद हमसे तौफीक नहीं छीनता, हमसे तौफीक नहीं छीनता कि हम बार बार, वो सबसे बड़ा बादशाह है, वो तौफीक छीन लेता है। बाज़ औक़ात लोग बिस्तर मर्ग पे पड़े होते हैं, उनको तौफीक नहीं देता कि दो रकात नमाज भी पढ़ ले, उनसे तौफीक छीन लेता है उनकी सारी उम्र की नाफरमानी के बदले में। लेकिन जब तक मुझे और आपको इजाज़त है कि मैं मस्जिद में आता हूँ और आकर या मुसल्ले पे खड़ा हो जाता हूँ, तो याद रखिए अगरचे मैं बेअदब हूँ और गफलत करता हूँ, लेकिन ये मेरा नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होना, ये मेरा मस्जिद में आने की इजाज़त तौफीक मिल जाना, ये बता रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अभी मुझे अपनी बारगाह से छुटकारा नहीं और मुझे बोला दे रहा, वरना वो चाहे तो ना आने। जब छोटे छोटे साहिबान इक्तदार और ताकत रखने वाले कोई पर्ची अंदर जाए, फलान शख्स मिलना चाहता है, वो कहते हैं मत आने दो उसको, तो वो जो सारी कायनात का बादशाह है वो भी जब चाहे तौफीक छीन सकता है और आने पर बैन लगा सकता है। जैसे कि दुनिया में बहुत सारे अफराद हैं, बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, सब कुछ है, हर जगह जाते हैं, मस्जिद में आते हैं तो गोया कि अल्लाह की तरफ से उनको इजाज़त नहीं होती, वो समझते हैं हम नहीं जा रहे, लेकिन हकीकत ये होती है कि खुदा उनको नहीं बुलाए, खुदा ने उनमें वो चीज़ नहीं देखी कि उनको बुलाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले, तवज्जो फरमाएं इन आयात की तरफ, बल्कि आपकी इजाज़त से मैं मुख्तसर मुख्तसर जो इस सूरह मुबारका की आगाज़ की आयात है वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, ताकि ये हमारी नमाजों में इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतरी का सबब बन जाए। सूरह फातिहा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब के शुरू में अपना तारुफ करवाया है, अल्लाह वो लफ्ज़ है जिसमें खुदा की सारी सिफात जमा। ये जो हम कहते हैं 99 नाम है अल्लाह के, सिफाती नाम है, लफ्ज़ अल्लाह इतना बड़ा है जिसमें सारी अल्लाह की सिफात शामिल है। जब मैं कहता हूँ या अल्लाह, या रहमान, या करीम, या गफूर, ठीक है, जितनी भी सिफात है, जब मैं कहता हूँ या अल्लाह, तो गोया मैं उस ज़ात को उसकी तमाम सिफात के साथ पुकार रहा हूँ। लफ्ज़ अल्लाह में सब सिफात जब। उसके बाद जो अल्लाह ने अपनी दो सिफात लाई हैं कि अल्लाह चाहता है कि जो मेरा मेरे बंदे पर फर्स्ट इम्प्रेशन पड़े, उसमें कहीं भी किसी अजाब किसी सख्ती का अंदेशा पैदा ना हो। दो सिफतें लाई दोनों रहमत वाली, शुरू उस अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। दोनों में फर्क क्या है? रहमान यानी उस रहमत का मालिक जो रहमत है वो सबको देता है, उसकी बात मानने वाला। बड़ा नुकता है इसमें, लफ्ज रहमान के माना में बड़ी बात समझ में आ जाती है। वो क्या? रहमान सबको देने वाला, अमूमी रहमतों वाला, आम रहमतों वाला। क्या मतलब? फर्क नहीं है उसके लिए, कोई उसकी बात मानता है उसको भी रिस्क देता है, कोई उसकी बात नहीं मानता है उसको भी रिस्क देता है। हत्ता के जो साहिब इक्तदार हो गया है, ताकतवर हो गया है, वो दूसरी मखलूक से रिस्क छीन लेता है, अल्लाह तब भी उसका रिस्क नहीं रोकता। ये रहमान है, तवज्जो फरमाए। लेकिन ये रहमान कुछ अरसे के लिए, जब तक दुनिया में उसने आजमाइश के लिए हमें वक्त दिया हुआ। अगला है रहीम। रहीम वो रहमतें जो खास हैं लेकिन कभी खत्म नहीं होती। रहमान वाली रहमतें खुदाबंद आलम क्या करेगा? जो उसके नाफरमान होंगे उनसे छीन लेगा और उनके लिए अजाब होगा। लेकिन रहीम जो उसकी खसूसी रहमतें जो वो उनको देता है जो उसकी तरफ रगबत करते हैं, जो उसकी तरफ आना चाहते हैं, जो उसके सामने सरकशी नहीं करते, सर झुकाना चाहते हैं, उनको जो रहमतें अता होती हैं वो खसूसी रहमतें हैं। खसूसी रहमतों वालों को वाले को रहीम कहते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। और रहीम में खसूसी भी है और दबाव भी है दायमी। कैसा तारुफ हुआ अल्लाह का? शुरू उस अल्लाह के नाम से जो आम रहमतों वाला भी है और खास और दायमी रहमतों वाला भी है। बिस्मिल्लाह ही मुझे बता देगी कि अगर दुनिया में तुझे ज़्यादा नेमतें मिल रही हैं तो, और तू गुनाह कर रहा है तो गफलत में मत रहना, ये नेमतें चली जाएंगी। ये नेमतें तो फिरौन को भी दी हैं, ये नेमतें तो शद्दाद को भी दी हैं, ये नेमतें तो नमरूद को भी दी हैं, ये नेमतें तो यजीद को भी दी हैं। और चे बसा अल्लाह के नाफरमानों के पास दुनिया की नेमतों के ढेर ज़्यादा होते हैं, सोने चांदी के ढेर उनके पास ज़्यादा होते हैं, अपने मकर व फरेब से वो गलत तरीक़ों से इक्तदार की कुर्सियों पर ज़्यादा बैठ जाते हैं। लेकिन ये दायमी नहीं होता, ये रहीम की रहमत नहीं होती। रहीम की रहमत कौन सी है? खसूसी और दायमी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आगाज़ हुआ अल्लाह से कलाम का। सूरतुल फातिहा दुआ है जो अल्लाह ने बंदे को सिखाई है, बंदे पे नहीं छोड़ा कि मुझसे कैसे बात करूँ। सबसे बेहतरीन वो दुआ करनी बंदे ने, लेकिन सिखा रहा कौन है? बंदे का खालिक। ठीक है ना? मसलन बच्चा बच्चे पे अगर छोड़ा जाए, वो बाहर से सुन के आए, बोलना सीख रहा है, ठीक है, वो बाबा से कहते हैं बाबा तुम क्या कर रहे हो, तो बाबा उसे प्यार से कैसे सिखाते हैं? तुम नहीं कहते बाबा को, आप बोलते हो। ठीक है ना? तो अल्लाह बिल्कुल इसी तरह बंदे को सिखा रहा है कि मुझसे कलाम करने का तरीका भी मैं खुद तुझे सिखाऊँ। तो पहले जब तूने मेरे नाम से आगाज़ कर लेना, फिर तूने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम हम उस अल्लाह के लिए है जो तमाम आलमीन को यानी तमाम मखलूकात को पालता है। अब अगर इसकी वजाहत करने में आए तो पूरा खमसा भी इसकी मिसालों में गुजर सकता है। अल्लाह पालता है। हम पालने वाला ज़्यादातर किसे समझते हैं? जो डायरेक्ट हम देख रहे होते हैं, माँ पाल रही है, बाप पाल रहे हैं। आप तवज्जो करें कि माँ के अंदर जो मोहब्बत पैदा हुई है अपने बच्चे के बारे में, वो किसने डाली? माँ ने आया कोई आपको ऐसी दुकान का पता है किसी मोहब्बत जहाँ पे सेल होती हो, कोई स्टोर हो जहाँ पे मसलन हमारे पेरेंट्स गए हो जब हम दुनिया में आने वाले थे और उन्होंने जाके वहाँ पे कहा कि हमारे घर में औलाद आने वाली है, तो हमें मसलन 2 किलो मोहब्बत दे दे बच्चों की, जो हम इंजेक्शन के ज़रिए इंजेक्ट कर लें ताकि जब बच्चा पैदा हो तो हम उससे मोहब्बत करें, ऐसा होता है? आप देखें कितनी चीज़ें हैं इंसान के, कितने जज्बात हैं जो औलाद वाले बैठे हुए, ठीक है, कि इंसान के अंदर कुछ ऐसे जज्बात हैं कि जब तक औलाद नहीं होती इंसान उनके जायके को जानता ही नहीं। औलाद के लिए इंसान का दिल किस तरह मचलता है, वो सिर्फ उसी को एहसास होता है कि जिसको अल्लाह औलाद देता है, वरना वो जज्बात आप सुन तो सकते हैं, देख तो सकते हैं माँ कैसे बच्चे की तरफ उसके लिए तड़प रही है, लेकिन उनको फील नहीं कर सकते। तो ये जिस खालिक को पता था कि ये जिस माँ को मैं ये बच्चा दे रहा हूँ, अगर इसके दिल में मैंने बेतहाशा मोहब्बत न डाल दी कि माँ को इस बच्चे के लिए अपना आप भी कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर देगी, तब तक ये बच्चा सही तरह नहीं पलेगा। तो उसने माँ के दिल में कितनी मोहब्बत डाल दी, उसने बाप के दिल में कितनी मोहब्बत डाल दी। तो असल पालने वाला कौन है? असल पालने वाला अल्लाह तबारक व तआला, उसने ये सारे असबाब सेट किए। तवज्जो फरमा रहे हैं। हम किसे कहते हैं? अरबी के लफ्ज उर्दू में एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। हम कहते हैं तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, तारीफ खुद भी अरबी का लफ्ज है, तो फिर हम्द का मतलब क्या हो? हम्द हर तारीफ को नहीं कहते, हम उस तारीफ को कहते हैं कि जब कोई एहसान करने वाला किसी मजबूरी से नहीं, किसी खौफ से नहीं, किसी लालच से नहीं, खुद से अपने इख्तियार से हम पर कोई एहसान करे, उस इख्तियार के साथ किए जाने वाले एहसान के बदले में जिस पर एहसान किया गया हो, वो जो ख़ास तारीफ है उसको अरबी में हम्द कहा जाता है। और अल्लाह का क्योंकि हर काम इख्तियारी है ना, उसे किसी का डर है, वो जो उसने मुझे दिया मुझसे छीन ले कोई उसका क्या बिगाड़ सकता, छीन के किसी और को दे दे मैं उसका क्या बिगाड़ सकता। जो बगैर खौफ के, बगैर लालच के, बगैर किसी चीज के सारे एहसानात अपने इख्तियार से और इरादे से करता है, हर काम उसका इख्तियारी है, लिहाजा फरमाया सारी हम्द भी उसी की, सारी की सारी हम अल्लाह की है जो आलमीन का पालने वाला है। और फिर अल्लाह को अपनी रहमत वाली सिफत का इतना प्यार है कि फिर रिपीट किया अर्रहमान अर्रहीम, बोलना जाना ये रब्बुल आलमीन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, हत्ता के नाफरमानों को भी देता है, उनसे भी नहीं छीनता, कि हो सकता है उसकी नेमतों से उनको खा खा के बिल आखिर कभी उनको हया आ जाए, उसकी बारगाह में आ जाए। आम रहमतों वाला और ख़ास रहमतों वाला मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक, जजा के दिन का मालिक, मालिक वो हर चीज़ का है। क्यों कहा गया जजा के दिन का मालिक? इसलिए कि उस दिन पता चलेगा कि हम जिन चीज़ों का दुनिया में खुद को मालिक समझते थे उनका भी मालिक वो था कि जो क़यामत के दिन का मालिक। ना मैं अपनी मोटरसाइकिल का मालिक था, ना मैं जिसे अपनी गाड़ी कहता था उसका मालिक था, ना मैं अपने जूते का, ना मैं अपने कपड़े का, किसी का मालिक मैं नहीं था, हर चीज अमानत थी। हत्ता कि मेरे बदन पे लगे हुए मेरे आज़ा, उनका मालिक भी मैं नहीं था। आप इसके मैसेज पे गौर कीजिएगा, क्यों मालिक नहीं था मैं हाथ का? इसलिए कि सूरह यासीन में अल्लाह ने बताया कि ये जिसे तू अपना हाथ समझता है मैंने तुझे दिया है कुछ अरसे के लिए, ये बदन मैंने तुझे दिया है, आँख मैंने दी है, कान मैंने दिए हैं, पैर मैंने दिए हैं, तुझे गुमान हो गया कि तू इनका मालिक है, तो फिर सुन क़यामत के दिन जिस ज़ुबान से बोलकर तू लोगों को धोखा दे लिया करता था, झूठ बोल लिया करता था, हम तेरी उस ज़ुबान को सील कर देंगे। अल्यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम आज इनके मुंह बंद कर देंगे, वतुकल्लिमुना अयदीहिम, और इनके हाथ हमसे कलाम करेंगे, वतशहदु अर्जुलुहुम, और इनके पैर गवाही देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, जो दुनिया में ये हरकतें किया करते थे।
اس دن انسان کو پتہ چلے گا کہ گاڑی اور مال اور جائیداد تو دور کی بات، میرا اپنا بدن بھی اس کا مالک میں نہیں تھا، سب چیزوں کا مالک اللہ تھا۔ قیامت کے دن کا مالک، اس کا پیغام یہ ہے کہ اس دن جس کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ میں بھی مالک ہوں، میں بھی پراپرٹی رکھتا ہوں، اسے پتہ چلے گا کہ کوئی بھی چیز میری پراپرٹی نہیں تھی۔ مالک یوم الدین۔ اب آپ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے وقت اس معنی کو بھی ذہن میں دوہرا لیں، میں مالک نہیں ہوں، یہ جس زبان سے میں یہ الفاظ بول رہا ہوں اس کا بھی میں مالک نہیں، جن ٹانگوں پہ کھڑا ہوں میں اس کا بھی میں مالک نہیں ہوں، اس کی امانت ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، آپ کا کوئی دوست ہو، دو آپ کے دوست ہیں، ایک کہتا ہے، عام طور پر فرض کریں آپ کے پاس بائک ہے یا گاڑی ہے، وہ آپ کے پاس سے مانگ کے لے جاتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے گاڑی دے دیں، مجھے کام ہے، میں انشاءاللہ کیئر کروں گا بڑی، ٹھیک ہے، آپ اس کو گاڑی دے دیتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی دیر بعد کوئی بندہ فون کرتا ہے، یار تمہاری گاڑی کس کے پاس؟ آپ کہتے ہیں میرا بڑا پیارا دوست ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، تو تمہیں پتا وہ گاڑی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا، اس نے مجھے کہا ہے میں کیئر کروں گا، آپ کی گاڑی کی حفاظت کروں گا، جو مجھے کام ہے بس وہ انجام دوں گا۔ تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ ذرا ادھر آؤ، وہ تو اس گاڑی سے ریلی بگا رہا ہے، وہ تو اس گاڑی کے سارے کرتب دکھا کے چیک کروا رہے ہیں لوگوں کو، گاڑی کیا کیا حرکتیں کر سکتے ہیں۔ آپ بھاگ کے وہاں پہ پہنچتے ہیں، یا آج کل کے زمانے میں وہ آپ کو ویڈیو بنا کے بھیجتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں آپ کی گاڑی ایسے چل رہی ہے جیسے موت کے کنویں میں چلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے دل میں اپنے اس دوست کے بارے میں کیا جائے گا، یار میں نے اس کی دوستی پر بھروسہ کیا، اس کو امانت دی، اس کو امانت دار سمجھ کے، اور یہ جیسے ہی مجھ سے دور ہوا اس نے لحاظ ہی نہیں کیا کہ گاڑی کا مالک ناراض ہوگا یا گاڑی کا مالک راضی ہوگا، میں کیسے استعمال کروں۔ توجہ فرمائیں، ایک دوسرا دوست آپ سے مانگتا ہے اور آپ اس کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جب آپ سے کوئی چیز لے کر جاتا ہے تو اپنی چیز سے بھی زیادہ آپ کی چیز کا خیال رکھتا ہے، امانت دار ہے۔ آپ کون سے دوست کو پسند کریں گے اور کون سے دوست کو آئندہ کہیں گے خبردار گاڑی کا نام نہیں لیں گے؟ آپ کو امانت دار پسند آئے گا، دھوکے باز آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے بندے بھی ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے سب کو یہ چیزیں امانتاً دی ہیں، سب کو یہ چیزیں اللہ نے امانتاً دی ہیں، کچھ اچھے بندے ہیں اللہ کے امانت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، اور کچھ اللہ کے اس گندے دوست کی طرح بندے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بس مل گیا تو جتنا مرضی خراب استعمال کر سکتے ہو کرو، ان کاموں میں استعمال کرتے ہیں اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنی عقل کی صلاحیت کو، کہ جن کاموں سے ان چیزوں کا عطا کرنے والا راضی نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن وہ سوال کرے گا کہ میں نے جو امانت دی تھی اس امانت کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا؟ ایک سوال پڑے گا امیدوار، مالک یوم الدین واضح ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید عبادت، صرف تجھ سے، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، یعنی ہمارا سر اگر جھکتا ہے عبادت کے لیے، اگر ہماری پیشانی زمین پر لگتی ہے کسی ہستی کے سامنے، تو وہ صرف تو ہے، تیرے سوا کسی کو عبادت کے قابل نہیں سمجھتے، اور ہمارا اعتقاد ہے کہ اس دنیا میں اگر تو کسی کو چھوڑ دے تو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور اگر تو کسی کی مدد کرنا چاہے تو کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، جھکا نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ فاتر ہے، ایک قرآن مجید کی سورہ مبارکہ، وہاں اللہ فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له وهو العزیز الحکیم، کہ اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو پھر کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو بند کروا سکے۔
अल्लाह से कहे तूने खोले मैं राजी नहीं हूं बात करने, कोई नहीं। हुमायूं से
और जिससे अल्लाह अपनी रहमत रोक ले,
फला मुरसिला लहा, तो फिर किसी में इतनी ताकत नहीं है कि खुदा का दरवाजा खुलवा दे। वहु अल अजीजुल हकीम,
और वो गालिब आने वाला है अपने कामों पर, कोई उस पर गालिब नहीं आ सकता, कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता, कोई उसको डरा कर बात बनवा नहीं सकता, यानी कोई उस पर गालिब नहीं आ सकता। और वो जो करता है उसका हर काम दानाई और हिकमत पर मबनी होता है।
दरवाजे खोलता है तो भी हिकमत होती है, दरवाजे बंद करता है तो भी हिकमत होती है। सलावत पढ़िए मंगवाया। और उसके बाद फरमाया कि अब यहाँ तक अल्लाह ने क्या सिखाया, अदब कैसे करना है, मुझसे बात शुरू कैसे करना है। आप देखो अगर फ़कीर जब जाते हैं ना शहरों का, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं ज़रा देहाती हूँ, गांव वगैरह में बाज़ ख़ास दिनों में मांगने वाले जब दरवाज़े पे आते हैं तो वो चाहे दुनिया का सबसे कंजूस बंदा, उसे कहते हैं सखियों के दरवाज़े पे आए, ठीक है ना, जिस दरवाजे से लोगों की झोलियाँ भर जाती हैं, एक रुपया दो रुपया दस रुपया लेने होते हैं, या थोड़ा सा आटा लेना होता है, या थोड़ी सी गंदम लेनी होती है, और तारीफ़ें ऐसी करती हैं कि यहाँ से जो है ब्लैंक चेक मिल जाएगा और उसके बाद सीट बन जाएगी, तारीफ़ें करते हैं। मांगने वाले को जो मांगने में ज़रा टेक्निकल हो उसको पता होता है कि जिससे मांगना है पहले उसको खुश कर, पहले उसकी तारीफ कर। तो अल्लाह ने भी क्या बताया, आते साथ मांगना शुरू नहीं करना। आप खुदा बंद आलम तौफीक दे, मौका मिला तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बयान करेंगे। एक हमारी किताब जो है हदीस की अलकाफ़ी, उसका जो हिस्सा है उसूल काफ़ी का, उसमें एक किताब का नाम है किताब दुआ। उसमें अहले बैत अतहार ने दुआ के बारे में हमें बताया हुआ, हमें बताया हुआ, पता नहीं किसको बताया हुआ, हमने तो कभी खोल के नहीं पढ़ी, ठीक है। अलबत्त हम तो चैम्पियन है, हमने कभी कुरान नहीं समझने के लिए पढ़ा तो ये बाकी का नंबर तो बाद में, ये किताबों में दफन है। बड़े नसीब वाले होते हैं कि जो दुनिया की किताबों के साथ साथ अहल बैत की किताबों का भी शौक़ होता है पढ़ने का, जो सुनने का नहीं पढ़ने का, तवज्जो फरमा रहे हैं, कुरान पढ़ने का जिस दिल में शौक़ हो, नहजुल बलागा पढ़ने का जिस दिल में शौक़ हो, सैफ़ सज्जाद, इमाम सज्जाद को रोने का शौक़ है, इमाम सज्जाद ने जो अपनी मीरास छोड़ी है सैफ़ सज्जादिया, उसको पढ़ने का शौक़ नहीं है। हमारे अंदर तजाद है, प्रॉब्लम है, मरज है, और इस मरज की वजह से हम सजा भुगत रहे हैं। जो होशियार है, बेदार है, दीदा बीना रखता है, सुनने वाला कान रखता है, उसको पता है कि हम सजा भुगत रहे हैं, हम बेकदरे हैं, हमने कदर नहीं की उन नेमतों की जो अल्लाह ने हमें दी थी। हमें तो कोई, अगर आपको कोई बंदा वैसे ही आप गुजर रहे हो, कोई सेठ खड़ा हो और वो कहे इधर आओ, आप मुझे बस अच्छे लगे हो, आपकी अदा अच्छी लगी है, लो मैं आपको इधर नई गाड़ी की चाबी दे रहा हूँ, नहीं आपको करोला दे रहा हूँ, आप तो सदके बारी कुर्बान नहीं हो जाओ, ठीक है, कैसा बंदा ज़बरदस्त, और मैं कितना लकी हूँ। अल्लाह की ज़ात गवाह है, रसूलुल्लाह के फरामीन गवाह हैं, अहले बैत के फरामीन गवाह हैं, मौलाए कायनात की नहजुल बलागा गवाह है, इस कायनात में कुरान से कीमती नेमत कोई नहीं, लेकिन देने वाले का हम एहसान भी नहीं मानते, क्योंकि एहसान वो मानता है जो शुक्रगुजार हो, और शुक्रगुजार वो होता है जो उस नेमत की वो कदर करे जो नेमत देने वाला चाहता है। और कुरान की कदर यह है कि उसको पढ़ा जाए, कुरान की कदर यह है कि उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए, ये बाद में आएगा, पहले पढ़ना है, जो पढ़ेगा उसको पता चलेगा, हम लोग नहीं पढ़ते। और हम क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल की उस शिकायत के जद में आने के लिए फुल तैयार है कि जब अल्लाह का रसूल कहेगा ऐ अल्लाह मेरे रब मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया, फुल तैयार है। दूसरों को हम डरा रहे हैं, तुम गलत हो, तुमने अहले बैत को छोड़ दिया, और अपना आप हमें भूला हुआ कि हमने भी कुरान के साथ उससे कम अशर नहीं किया जो उन्होंने अहले बैत के साथ किया, हमने भी कम अशर नहीं किया। अभी से पहले जब मैं मजलिस पढ़ रहा था मदीर कैंट में, वहाँ भी एक नुकता अर्ज किया था, आपकी खिदमत में भी अर्ज कर, आजकल मसलन ये फितने जोरों पर है, सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, फलान फलान वगैरह वगैरह, फितने ज़्यादा जल्दी सर्कुलेट हो जाते हैं, जल्दी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ایک تقریر سنتے ہیں آدھی قوم تعریف کرنا شروع کر دیتی, آدھی قوم اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتی, ٹھیک ہے, تقسیم ہوئی. دوسرا اس کے خلاف بولتا ہے تو وہ جو پہلے گالیاں دے رہے تھے اس کی تعریفیں شروع کر دیتے, اور جو پہلے اس کی تعریفیں کر رہے تھے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے, اور ایک لڑائی در لڑائی قوم میں جاری و ساری. کاش کہ ہم بجائے جلدی جلدی کسی کو برا بھلا کہنے کے اور جلدی جلدی کسی کی تعریفیں کرنے کے, پہلے ہمارے پاس کوئی, ہم یہ دیکھ لیتے کہ جس بنا پر میں اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوں, میرے ذہن میں جو نظریہ اور عقیدہ ہے جس کی بنا پر میں فلان کو برا کہہ رہا ہوں اور جس کی بنا پر میں فلان کی تعریف کر رہا ہوں, یہ جو میں نے اپنے ذہن میں بنایا ہے یہ میں نے اس جگہ سے بنایا ہے جہاں سے میرے اماموں نے بتایا ہے کہ میں نے اس جگہ سے بنایا ہے, اس طریقے سے بنایا ہے جس طریقے سے میرے آئمہ نے مجھے منع کیا. یہ کوئی سوچتا ہے؟ کوئی نہیں سوچتا. ہر کوئی سمجھتا ہے جو میرے دماغ میں گھسا ہے وہی حق ہے, اور جو دوسرا بات کر رہا ہے میری مخالفت میں وہ برا ہے. کون فیصلہ کرے گا؟ قیامت تک بھی اس طرح لڑتے رہے جب تک کہ ہم اس طریقے پر توجہ نہ کریں اور سنجیدہ نہ ہو جو طریقہ اہل بیت اطہار نے بتایا ہے دین سیکھنے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر آپ سے ڈیسیجن بھی لے لوں, آپ کو کرسی قضاوت پہ بٹھاؤں, قاضی بناؤں, کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ بات ٹھیک کون سی اور غلط کون سی ہے. اپنی اجازت اگر آپ دیتے ہیں تو ایک سوال پڑھ دیجیے. محمد والے اسی کتاب جس کا میں نے نام لیا الکافی, اس کے مقدمے میں, اصول کافی کے مقدمے, بہت ساری احادیث شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ احادیث لے کر آئے اہل بیت کی کتاب کے مقدمے میں, جن حدیثوں میں اہل بیت نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر کوئی دین کو سیکھنا چاہتے ہو, وہ دین جو ہم لائے ہیں, وہ دین جو ہم نے قربانیاں دے کر بچایا ہے, اگر اس کے بارے میں سنجیدہ ہو اور اسے سیکھنا چاہتے ہو تو طریقہ کیا ہے. ایک حدیث بیان کر کے آگے بڑھوں گا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, امام فرماتے ہیں, اب آپ دو طریقے امام بتا رہے ہیں, ایک صحیح اور ایک غلط. امام فرماتے ہیں جس شخص نے اپنا دین قرآن, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت سے حاصل کیا, پہاڑ ہل جائیں گے یہ نہیں ہلے گا, اتنا مضبوط دین ہوگا. اور جس شخص نے اپنا دین لوگوں سے سن کے لیا, لوگ اس کو دین سے نکال بھی دیں گے, کیونکہ وہ سن کے آیا ہے. ہو سکتا ہے جو دین میں لانے والے والا تھا دین سے نکالنے والا اس سے بڑا خطیب ہو, اس سے زیادہ بڑا فنکار ہو, اس سے زیادہ اچھی آواز ہو اس کی, توجہ فرما رہے ہیں. تو امام نے فرمایا جس نے لوگوں سے سن کے دین بنایا لوگ اس کو دین سے خارج کر دیں. دو طریقے بتائے امام, ان دونوں میں سے صحیح طریقہ کون سا ہے اور غلط کون سا ہے, پہلا صحیح ہے یا دوسرا صحیح ہے؟ جی آپ ذرا میرے ساتھ رہیں, میں اس کے تھوڑا, کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری محفل میں نعرے وغیرہ نہیں لگتے زیادہ تر, ٹھیک ہے, نعروں والی باتیں نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ آپ کے دماغ میرے ساتھ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے تھوڑا بہت میں یہ کرتا رہتا ہوں. پہلا طریقہ ہے کہ دین سیکھو قرآن اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول کی سنت سے, اور دوسرا طریقہ ہے کہ دین سیکھو ادھر سے سنو ادھر سے سنو, ادھر مولانا ادھر مولانا, ایک خطیب ایک شاعر فلان, دادی اماں دادا ابو ابا حضور اماں جان, ان سے سن کے دین بناؤ. پہلا طریقہ صحیح ہے قرآن و سنت والا یا دوسرا؟ اور ہمارے یہاں رائج کون سا طریقہ؟ الحمدللہ رب العالمین وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کرنا بڑا زبردست ہے, اہل بیت کی بات سن کے اس کے مطابق عمل کرنا, اس کی حالت ہم خود دیکھو.
अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, उन दोनों की हालत उम्मत ने जो बनाई है हम सब बेहतर जानते हैं। क्या सलूक किया दोनों के साथ? कुरान के साथ एक गिरोह ने क्या किया, अहले बैत के साथ एक गिरोह ने क्या किया। उसके बाद हमारे आइम्मा बता रहे हैं कि ये तरीका ठीक है दीन सीखने का, और आप खुद फरमा रहे हैं कि हम दूसरे तरीके को तरजीह देते हैं, हमारे यहाँ दूसरा तरीका राइज है। अब बताएं किस बात पर खुश होना चाहिए? ये लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया है। आप अगर किसी कॉलेज में दाखिला लें, दाखिला लेना चाहें, तो वो आपसे कहेंगे इन 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 सब्जेक्ट्स में अगर नंबर लिए और हमारे टेस्ट में तुमने जो हम खुद लेंगे पास हुए तो हम तुम्हें दाखिला देंगे। आप पहुंच जाए उनसे कहें जो तुमने कहे वो तो नहीं, जो मैंने अपने दादा दादी से सुना है, जो मैंने अपने महल्ले के दोस्तों से सुना है, वो मैं तैयारी करके लाया हूँ, ये टेस्ट मैं दूंगा और इससे मैं दाखिल होऊंगा। आपको कोई दाखिल करेगा उस कॉलेज में कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये हमने इस्लाम के नाम पे कॉलेज ऐसा बनाया कि हम अपनी मर्जी से दाखिल होते हैं। हम अहले बैत से ये भी नहीं पूछते जो हमारा रविश तरीका है दीन सीखने का ये आपने सजेस्ट किया या नहीं किया। मैं अर्ज किया करता हूं कि आज का एक आम आदमी अपने मैट्रिक या ओ लेवल्स या ए लेवल्स में पढ़ने वाले बच्चे के लिए किसी सब्जेक्ट की ट्यूशन के लिए अगर उसने किसी टीचर का इंतखाब करना हो तो जितनी कोशिश कर सके चेक करता है कि उस सब्जेक्ट के माहिरीन मेरे शहर में मेरी दस्तरस में कौन है और उनमें से भी सबसे अच्छा कौन है ताकि मेरा बच्चा उससे पढ़े। लेकिन यहां बैठने वालों से कोई पूछता है बिठाने से पहले कि ये इस सब्जेक्ट का कितना माहिर है और कौन सी डिग्री है इसके पास कि इसको इस मेंबर पे बिठाया जा रहा है? माजरत चाहता हूँ, फिजिक्स की कीमत ज़्यादा है, हमारा अमल ये बता रहा है दीन इस्लाम की कीमत कम है। जिस इमाम को हम रो रहे हैं इस फर्श अज़ा पर बैठकर, उसके लिए इस दीन की असली शक्ल की इतनी ज्यादा कीमत थी कि सारा घर कुर्बान कर दिया, दीन की तहरीफ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इमाम साहब। और हमारी तवज्जो इतनी भी नहीं है कि हम दीन ले रहे किससे, कितना क्वालिफाइड बंदा है। जिस बंदे का दिल करे ना कहते जी मुझे भी 5 मिनट दे, कोई इतराज नहीं करता, ठीक है ना? क्या कहते हैं? कोई नहीं कोई नहीं, पाकों का जिक्र ही करना है ना, पाक हस्तियों का जिक्र। सुभान अल्लाह, अगर मुझे फिजिक्स ना आती और आपके बच्चे के इम्तिहान करीब हो, इम्तिहान भी उसके बड़े कोई क्रिटिकल ज़बरदस्त इम्तिहान हो जिसका उसका मुस्तकबिल डिपेंड कर रहा हो, और मैं कहूँ जी मैं कुम से पढ़ा हूँ, मैंने सर्फ भी पढ़ी है, मैंने नहब भी पढ़ी है, मैंने मंतिक भी पढ़ी है, मैंने फलान भी किया है, फिजिक्स मैं पढ़ाऊँगा, आप क्या करेंगे? आप दिल में दुआ करेंगे जी अल्लाह के बला से मेरी हमारी जान छुड़ा, इसका दिमाग ख़राब हो गया, पढ़ के कुछ है, हमारे बेटे का बेटा क्या कर रहा है, गर्क कर रहा है। दीन के बारे में इतने गैर संजीदा हैं कि एक फिजिक्स के सब्जेक्ट की जितनी ओ लेवल्स और ए लेवल्स की इतनी हैसियत नहीं है कि किस से दीन लेना है और किस को इजाज़त नहीं देनी कि वो दीन की बात करे मिंबर पर बैठ कर। अल्लाह सजा दे, इमाम हुसैन गिरेबान से पकड़ेगा क़यामत के दिन कि तुम्हारे बच्चे की मैट्रिक या एफए और एफएससी का या ओ लेवल्स ए लेवल्स का इम्तिहान, उसके लिए तुम कितने संजीदा थे। और जिस दीन को बचाने के लिए, दीन के तो कई वर्जन पेश किए जा रहे थे ना, असल दीन को जो मेरे नाना लाए थे उसको बचाने के लिए मैंने कुर्बान कर दिया सब कुछ, और तुम इतने नॉन सीरियस थे कि तुम यही नहीं देखते थे कि दीन किससे सीखना है और दीन किससे नहीं सीखना। होना तो ये चाहिए था यहां बैठने के लिए तमाम दुनिया से सख्त क्राइटेरिया होता और मेरिट होता कि यहां पे कौन बैठेगा, 1000 टेस्ट पास करके आए। इधर तो गवैये शुरू हो गए, जो माह मुहर्रम सफर में गाने नहीं गा सकते, शिया घर के पैदाइशी हैं, उनको किसी ने बेहतरीन ऑल्टरनेट दिया हुआ है कि इंडिया की फिल्मों के जो हिट गाने हैं सारे साल के और पिछले भी ओल्ड इज गोल्ड के तहत पुराने गाने भी, जिसको कौम को सुनने की आदत है, कौम भी तो बड़ी मौसीकी की रसिया है, उनकी रूह की गजा बनी हुई है, तो उनके पास क्या ऑल्टरनेट है कि सारे हिट गानों पे ला के बनाओ और इस कौम को नचाओ, बेहतरीन ऑल्टरनेट पेश करो, सवाब भी ले और सवाद भी ले। सवाद समझते हैं ना, मजा, ठीक है ना, पंजाबी में सवाद कहते हैं। मजलिस सुन के जाते हैं, कहते हैं बड़ा सवाद आया, कभी कहते हैं सवाद ही नहीं आया, बिल्कुल सवाद लेने आते हैं। आया इसलिए ये कुर्बानी पेश की गई कि हम कहें कि हमने सवाद लिया और हमने सवाद नहीं लिया, हमने मजा लिया और हमने मजा नहीं लिया, इसलिए नहीं है। क़यामत के दिन हम पकड़े जाएंगे, अपने गैर संजीदा रवैयों की वजह से पकड़े जाएंगे। आप तसव्वुर करें, इस रूए जमीन पर करबला में जो खून गिरा है, जो खून के कतरे गिरे हैं, इमाम तो बहुत बुलंद है, इमाम के साथियों का खून इतना कीमती था कि अल्लाह को मुझे बाकी चरिंद परिंद फिर रहे थे वहां पर, और दुनिया परस्ती में मस्त होके जो अपनी दुनिया में गर्क थे, उन सब से ज्यादा उन शहदा के खून का एक एक कतरा अल्लाह के हकीम थे, उसके बारे में इतना गैर संजीदा रवैया। कौन पढ़ाएगा, कौन बताएगा, पूछते ही नहीं। तो मैं पहली मजलिस में भी अर्ज किया, रिपीट कर रहा हूं यहां पर, कि काश ऐसा हो जाता कि जिसको आपने दावत दे दी है मजलिस की, अशरा पढ़ने की, खमसा पढ़ने की, ठीक है ना, उससे कहते कि हमने एक नए तरीके का इस्तखारा करवाना है आपसे, हम इस्तखारा करके कुरान खोलेंगे, जो सफ़ा निकलेगा आप हमें बताएंगे इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया, तब हम आपको दावत देंगे, अगर हमें पता चलेगा आप कुरान को जानते हैं, ठीक है ना, और अगर आप इस्लाम की बुनियादी तरीन किताब को ही नहीं जानते तो फिर अलविदा, ना आपकी सुर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना आपकी खिताबत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना आपने अगर अमामा अबाकबा लगाया हुआ हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। काश पाकिस्तान के सारे बानी कोई मेयार बना लेते कि इन कम से कम चेक कर सकते हैं, मौला मौला अली करने वाली, नारे लगाने वाली कौम जो मौला का जिक्र सुनाने के लिए आ रहा है, उसके सामने खोल दे कहीं से नेजुल बलागा और उससे कहें ये सबक पढ़ के बता कि मौला ने क्या फरमाया, अगर तू बता सका तुझे सुनेंगे, वरना तुझे नहीं सुनेंगे, तो फिर ये गवैये गवैये खत्म हो जाएंगे, फिर ये इंडिया की तर्ज है, इंडिया वापस जाएंगे, यहां पर नहीं आएंगे। लेकिन हम नॉन सीरियस मस्त है, हम जन्नत का टिकट लेने आते हैं और कोई जिम्मेदारी लेने यहां से नहीं आते, इस तरह जन्नत के टिकट नहीं मिलते। जिसको शक हो अल्लाह की किताब पढ़ ले, ला रई बफी, जिसकी किसी बात में कोई शक नहीं, जिसको शक हो वो नेजुल बलागा पढ़ ले। एक छोटा सा वाकया मैं जहां भी जाऊं बयान करता हूं, अगर मैंने साले गुज़श्ता यहां बयान किया हो मेरे ज़हन में आ गया लिहाजा बयान करूं, बड़ा नेचुरल और हकीकी और एक्यूरेट बहुत मेरे साथ पेश आया। मैंने जब नया नया ईरान में दाखिला लिया, कुछ अर्सा मुझे ईरान में हुआ था, तो छुट्टियों में मैं अपने गांव आया हुआ था, वहां पर एक शख्सियत थे जो मुझे जानते थे, अजीज थे, उन्होंने कहीं मुझे देखा गुजरते हुए तो मुझे आवाज़ दी, कहा कि फलान इधर हो, मैंने कहा जी इधर आओ मेरे पास, मैं चला गया पास, बड़ी उम्र के थे, कुछ अर्सा पहले फौत हो गए, तो मुझसे सवाल करते, अब तवज्जो से सुनिएगा, उनके हाथ एक्सीडेंटली कहीं नेजुल बलागा लग गई थी, एक्सीडेंट, ठीक है ना, हमारी जिंदगी में तो ऐसे एक्सीडेंट भी नहीं होते, तो एक्सीडेंटली कहीं से नेजुल बलागा हाथ भी लग गई, और उससे बड़ा एक्सीडेंट ये हुआ कि उन्होंने पढ़ भी, वो उन दिनों में नेजुल बलागा पढ़ रहे थे, तो मुझे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं मुझे ये बताओ कि ये जो नेजुल बलागा है इसमें मौला अली के फरमान, हाँ उन्होंने ये कहा कि ये मौला अली ने लिखी है, मैंने कहा नहीं मौला अली ने नहीं लिखी, एक आलिम है उन्होंने ये लिखी है, और मेरा मत कहते हैं मेरा मतलब ये है कि जो इसके अंदर कलाम है वो मौला अली का है, तो मैंने कहा जी इसके अंदर जो कलाम है, जो खुतबे हैं, जो खतूत हैं, जो छोटे छोटे जिनको कलिमात इक़सार कहते हैं, ये मौला अली के जुमले हैं। अब ज़रा आप उनकी बात सुनिएगा। मुझे कहते हैं, मेरा बेटा, अगर ये वाला मौला अली है ना नजर बलागा वाला, तो ये हमारे गांव में से एक भी नहीं बचेगा। तवज्जो फरमा रहे। और ये बिल्कुल वो कोई खिताबत नहीं कर रहे थे, वो और मैं थे। कहते हैं, मेरा पुत्र जो ये मौला अली है ना, जो ये नजर बलागा वाला है, कम अज़ कम जिनको मैं जानता हूँ ना, उनमें से कोई नहीं बचता क्यामत। कम अज़ कम चेक तो कर ले क्यामत के दिन किस मौला से मुलाकात हुई। वो मौला जो हमने सुरताल में जिनकी मार्फत हासिल की है, ये वो मौला जो नजर बलागा के फरामीन वाला मौला। बहुत सारे मौला पेश किए जा रहे हैं ना मुआशरे में, वो भी मौला है जिनको अल्लाह बनाया जा रहा है। क्यामत के दिन कौन सा मौला मिलेगा, अल्लाह का अब्द मिलेगा या अल्लाह मिलेगा? क्यामत के दिन जो मौला अली मुलाकात करने वाला है, वो तो उनकी जुबानें खींच लेगा जिन्होंने जुबानों से अली अल्लाह कहा। वो तो खुद शिकायत दर्ज कराएगा कि इनको पकड़ो जिन्होंने मुझ पर, अल्लाह के बंदे पर, इतना बड़ा बोहतान लगाया कि मुझे मेरे खालिक के बराबर कराया। मेरे अंदर वो सिफात ये मुझ पर तोबते लगाते थे जो मेरे खालिक की सिफात थी। ये उसको पता चलेगा जो नजर बलागा पड़ेगा, वरना आइम्मा के कौल तब्दील नहीं होते। उन्होंने फरमाया, जिसने सुन सुना के दीन बनाया तो लोग तो उसको दीन से निकाल भी देंगे। तवज्जो फरमा रहे। लेकिन जो सुन सुना के दीन से निकला हुआ होता है, वो अपने से बड़ा दीनदार किसी को समझता ही नहीं। कहता, मेरे जितनी मार्फत, तुम बेमार्फत हो, तुम्हें मौला की मार्फत नहीं है। हमें राजों का पता लग गया। क्या राज का पता लग गया? कि अल्लाह मौला अली सुभान अल्लाह, ये राज पता लग गया। और अपने आप से बड़ा मार्फत वाला किसी को समझते नहीं। क्यों? इसलिए कि कभी जो मीरास पहुंची है दीन की, ये तीन किताबें मैं बार बार तकरार किया करता हूँ, कुरान, नहजुल बलागा, सहीफ़ा कामिल, इससे अपने जहनों को मानूस कीजिए, अपने बच्चों के जहनों को पहले दीन याद से सिखाइए। उसके बाद ना आपका जहन ना आपके बच्चों का जहन जो इन किताबों से हट कर बातें होंगी उनको कबूल नहीं करेंगे। और आप देखेंगे कि जब आप कुरान पढ़ेंगे, आप कुरान के मिजाज से आशना होंगे, फिर आप नहजुल बलागा पढ़ेंगे, आपको महसूस हो जाएगा कि ये नहजुल बलागा जिसका कलाम है, ये उसी खालिक का बंदा है जिसके कलाम का नाम कुरान है। और जब आप सहीफ़ा सजादिया पढ़ेंगे तो आपका दिल और दिमाग गवाही देगा कि वो जो अजीम खालिक जिसने अपनी अजमत कुरान में बयान फरमाई है, उसकी अजमत की हकीकी मारिफत रखने वाला ये वो बंदा है जिसने सहीफ़ा सजादिया में उस अल्लाह से कलाम किया। लेकिन कब? जब इन किताबों को पढ़ा जाए। क़यामत के दिन कोई एक्सक्यूज कबूल नहीं होगी कुरान न पढ़ने की, नहजुल बलागा मसलन न पढ़ने की, सहीफ़ा सजादिया न पढ़ने। हर इमाम अपने बारे में सवाल करेगा। रसूलुल्लाह कहेंगे, मैं कुरान लेकर आया था, पढ़ा तुम? आप कहेंगे, माजरत। फिर मौला अली आएंगे, कहेंगे, पढ़ी नहजुल बलागा तुमने, तुम्हारे पास थी, माजरत। इमाम सज्जाद आएंगे, पढ़ा तुमने? इमाम हुसैन कहेंगे, मैंने आखिरी आशूर की आखिरी रात मैंने जब मोहलत मांगी थी, तुम नहीं सुनते थे, कोई ना कोई तो तुम्हें बयान करता होगा कि मैंने अपने भाई अब्बास से ये कहा था, इनसे मोहलत लो कि मैं आज की रात जी भर के खालिक की इबादत करना चाहता हूँ और कुरान की तिलावत करना चाहता हूँ। अब्बास, आप जानते हैं हुसैन को तिलावत कुरान से इश्क है, तुमने ये सुना था, फिर तुमने उस कुरान के साथ तुमने क्या रवैया रखा? ये सवाल होने वाले, ये सवाल हम सब से होने वाले हैं कि ये जो इतनी अहम तरीन चीजें थी इस दीन की, इनके साथ हम लोगों ने क्या अपनी जिंदगियों में रवैया रखा था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। वापस आते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन के बाद ये सारा अदब अल्लाह ने सिखा दिया। उसके बाद
अब कहा कि मुझसे मांगो लेकिन तुम पे नहीं छोड़ूंगा, तुम उल्टी सीधी चीजें मांगते हो, तुम्हारे जहनों में दुनिया घुसी हुई, तुम कपड़े मांगोगे, जूती मांगोगे, गाड़ी मांगोगे, पेट का दर्द ठीक हो जाए, शुगर सही हो जाए, कोलेस्ट्रॉल ज़रा सही हो जाए, फलान हो जाए, हमसाये के पास फलान चीज़ आ गई है, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, इस किस्म की चीज़ें तुम मांगोगे, तो तुम्हें मैं ही सिखाऊंगा कि तुमने मुझसे क्या मांगा है, और मैं तुम्हें बताऊंगा जो इस दुनिया की हर चीज़ की अहमियत जानता है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ कितनी ज़रूरी है, वो चीज़ जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मुझसे मांगो हर नमाज में, और एक मरतबा नहीं दो मरतबा मांगो, और वो है सीधे रास्ते की हिदायत, सीधे रास्ते की हिदायत, और सिर्फ अपने लिए नहीं मांगना। जो दीन मेरा रसूल लेकर आया है उसमें ये मत कहना कि मैं बच जाऊँ बाकी जाते हैं जहन्नम में, तो जाए उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है, हम क्या करें, वो खराबी करें, नहीं नहीं फरमाया, नहीं सिखाया कि ये कहे कि ए अल्लाह मेरी हिदायत कर, इहदिनी होना चाहिए था, मेरी हिदायत कर, क्या फरमाया, इहदिना, हम सब की हिदायत कर, मेरी भी हिदायत कर, मुझे भी रास्ता दिखा सीधा, और जो मेरे भाई हैं बाकी लोग हैं उनको भी सीधा रास्ता दिखा, हम सबको कामयाब कर, हम सब ने मरना है, हम सब ने तेरी बारगाह में पेश होना है, मैं सेल्फिश नहीं हूं, मैं खुद गरज नहीं हूं, मुझे दुख होगा अगर मैं जन्नत में पहुंच भी गया मेरे साथी जहन्नम में चले गए, मैं उस रसूल का मानने वाला हूं जो मुशरिकों को भी जहन्नम में जाते देख के तड़पता था, सबको हिदायत, सबके लिए तड़पता, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। यहीं पर एक बात करूं और आज की बात को मैं तमाम करना चाहूँगा, एक बात याद रखिएगा, इस पे गौर कीजिएगा, बात तफसीली है लेकिन आपके आपकी अकलों के सपोर्ट कर रहा हूँ कि इसको सोचिए। मकतब अहले बैत यानी हकीकी इस्लाम, तवज्जो फरमा रहे, मकतब अहले बैत यानी हकीकी इस्लाम। अब मुझे बताइए कि इस्लाम अल्लाह ने सिर्फ शियों के लिए भेजा है या सुनियों के लिए भी भेजा है, या इस दुनिया में जितने इंसान हैं सब के लिए भेजा है? जी तो फिर हम इस पे खुश क्यों होते हैं, हम जन्नत में जाए बाकी जहन्नम में जाए? जी हम क्यों यहूदी मिजाज हैं? सख्त बात है, कुरानी बात है, कुरान ने बताया यहूदियों का मिजाज ये था, कहते थे जन्नत सिर्फ हमारी है, मजाक है किसी की जाए जन्नत, हम यहूदी जाएंगे बस, मसीह भी कहते थे हम मसीही जाएंगे बस, अल्लाह ने कहा ये तुम्हारी बेबुनियाद आरजुएं हैं। एक आरजू होती है जो कुछ कैलकुलेट में कुछ हिसाब किताब के तहत होती है, मसलन बंदा मेहनत भी कर रहा हो और फिर आरजू करे, मसलन उसने अच्छी फसल उगानी है, मेहनत भी कर रहा है, अपने आप को मट्टी में मट्टी कर दिया उसने, अब आरजू करता है फसल अच्छी हो, लोग कहते हैं ठीक आरजू है हक रखता है, लेकिन एक बंदा घर में बैठ के हुक्का पीता रहता है, ना हल चलाता हूँ ना जमीन पर जाता हूँ, कोई पूछे तो कहे पूरे पंजाब में सबसे अच्छी, पूरे सिंध में सबसे अच्छी फसल मेरी होगी, तो लोग उसे क्या कहेंगे? ये अहमकों की जन्नत में रहता है, इसका दिमाग खराब, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे हरकतें देखो और आरजुएं देखो। अगर मकतब अहले बैत इस्लाम की असल शक्ल है तो फिर अपने आप को शिया कहने वाले की जिम्मेदारी है कि वो इस इस्लाम को अपने तक महदूद नहीं रख सकता, मुजरिम है अगर रखे, उसके अंदर वो तड़प होनी चाहिए जो उसके आइम्मा के अंदर थी, अपने दर्जे के मुताबिक उनकी इक्तदार, और उनके अंदर तड़प लोगों की निजात की थी, लोगों को जहन्नम में भेजने की तड़प नहीं थी अहले बैत। लिहाजा अगर कोई जाहिल प्रोपेगेंडा का शिकार आकर तौहीन भी करता था, आइम्मा के सामने उनकी तौहीन करता था, वो गुस्से में रिएक्ट नहीं करते थे, बड़े तहम्मुल के साथ सुन लेते, जब वो अपना अपनी हरकत करके रुक जाता था, फिर उसके बाद उसके साथ
उस अखलाक का मुजाहरा करते थे
कि जब उस पर इंकशाफ होता था कि ये जो मेरा इस तरह मेरी मदद कर रहा है,
जो इस तरह मेरी खिदमत कर रहा है, जो इतने अच्छे अखलाक के साथ मुझे पेश आ रहा है, ये वही हस्ती है जिसको थोड़ी देर पहले मैं उसके सामने गालियां निकाल रहा था,
तो उसके पास फिर कोई और चारा नहीं होता था सिवाय उनके कदमों पर गिर कर माफी मांगने के और उनकी मोहब्बत को अपने दिलों में जगह देने। ये रवैया कहाँ गया अहले बैत का, इसको हम फॉलो क्यों नहीं करते? हम क्यों फॉलो नहीं करते?
हमारे दिलों में इतना इस तड़प को, लोगों की निजात की तड़प को इतना निकाल दिया गया है
कि अब तो शिया आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जहन्नम भेजने में ग्रुप बनाकर एक दूसरे पे तबर्रे भी करते हैं, एक दूसरे पे लानते भी करते हैं। तवज्जो फरमा रहे, किसी को शक हो तो फेसबुक चेक कर लो, आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजते हैं दूसरे को कि दूसरों की फिक्र भूल गई है अपने आप को शुरू। क्यों? कि जैसे जैसे जब इंसान उस रास्ते से, उस रविश से हटता है जो दीन के वारिसों ने, हकीकी वारिसों ने बताई है, उसके बाद फिर मरकज से और सिरात मुस्तकीम से उसका फासला और दूर होने शुरू हो जाता है। अगर करबला सिरात मुस्तकीम है कि है और हक भी यही है, इसका मतलब यह है कि करबला वालों को तो तड़पना चाहिए।
हक ये बनता है कि हमारे फर्श अजाब पर सब आए, कोई ऐसी हरकत ना हो कि जिसकी वजह से बददिल होकर चले जाए।
क्योंकि अहले बैत ने हमसे कहा है, हमारा कलाम दूसरों को तुम सुनाओ।
लोगों को नहीं पता, हमारे मुखालिफीन ने प्रोपेगेंडा कर दिया, जहरीली तबलीगात कर दी उनके जरखरीद लोगों ने, खतीबों ने उस जमाने में। उम्मत को काटने की कोशिश की गई दीन के हकीकी वारिसों से। अब तुम जो हमारे मानने वाले हो, तुम्हारी गर्दन पर यह जिम्मेदारी है कि तुमने लोगों को हमारा कलाम सुनाना है, इसलिए कि जब लोग हमारे कलाम का हुस्न जान लेंगे,
खुद ब खुद हमारे रास्ते पर चल पड़े। लेकिन हम क्या करते हैं? हमने तो ऐसी चीजों को ऊपर रख लिया है कि जिसको देखकर कोई करीब आने वाला भी करीब आने का ना सोचे।
हमें ना आयतुल्लाह खामिनाई की बात समझ आती है, हमें ना आयतुल्लाह सिस्तानी का दर्द समझ आता है, हमें ना इस वक्त आलमी हालात और अमेरिका और इसराइल और बरतानिया और उनके जितने भी खबीस, वो ऑक्टोपस की शक्ल में जितने उनके हथकंडे हैं, उनके हाथ हैं नजर में आने वाले और नजर न आने वाले, मिनल जिन्नति वन्नास, नजर में आने वाले शैतान और नजर न आने वाले शैतान, जो ये पूरा नेटवर्क है, वो क्या चाहता है शिया और सुन्नी को तकसीम करके?
हमें नहीं समझ आ रहा आयतुल्लाह खामनाई क्या तड़प रहे हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी क्या तड़प रहे हैं। हमें यहाँ पर फिरते हुए एक मौलवी की बात समझ में आती है जिसने हो सकता है सर पर अमामा भी रखा हो,
जो हो सकता है अपने आप को कुम और नजफ का पड़ा हुआ भी कहता हो, लेकिन भरता सिर्फ नफरतें। ऐसी हरकतें करना सिखाता है लोगों को
कि जिनको देखकर करीब आने वाले भी करीब ना आए। बहुत खूबसूरत जुमला फरमाया आयतुल्लाह खामनाई ने कि आज तशय्यो की अजमत का दौर अल्लाह ने शुरू करवा दिया। आज
वो जो हुसैन हुसैन करते हैं, जिन्होंने जिंदगी का ढंग हुसैन से सीखा है, उन्होंने कई सरजमीनों पर, यमन की सरजमीन, लुबनान की सरजमीन, इराक की सरजमीन, शाम की सरजमीन और हत्ता फलस्तीन में भी जो जान बाकी है उन मुजाहिदीन में, उनकी पुश्त पर भी कौन है? हुसैन हुसैन करने वाले, अली अली करने वाले।
तवज्जो फरमा रहे हैं, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
आज इस मकतब की अजमत देख रहा है जमाना और दुश्मनाने अहले बैत से उस जमाने के अहले बैत के दुश्मनों की, आज के जमाने की अहले बैत की दुश्मन औलादों से बर्दाश्त नहीं हो रही तशय्यों की अजमत। दुनिया तवज्जो कर रही है, बशरियत तवज्जो कर रही है इस दीन के पैगाम की तरफ। फिर फरमाते हैं अब जब ये जमाना आ रहा है और लोग तवज्जो कर रहे हैं तुम्हारी तरफ, इस मकतब मजलूम सैयद शुहदा की तरफ लोगों की तवज्जो हो रही है, तो अब अपनी महफिल में कोई ऐसी हरकत न करो कि अगर कोई हुर सिफत उधर से इधर आना चाहता हो तो तुम्हारी बद अखलाकी की वजह से वो रुक जाए, तुम्हारी बद अखलाकी की वजह से, तुम्हारी नासमझी की वजह से, तुम्हें जो दीन के नाम पर जो जिस चीज का मकाम है उससे हटाकर किसी और मकाम पर रखकर कोई चीज तुम्हें बताई गई और तुम सादे मोहब्बत अहले बैत में तुम धोखे में आ गए और तुमने ऐसी हरकतें कर दी, तो इस दीन की, इस मकतब की जो अजमत का परचम बुलंद हो रहा है उसमें रुकावट बनने में तुम अपनी बेफहमी और बेमारफती की वजह से इस्तेमाल ना हो जाओ। उन सिफीन की जंग में मौला अली के लश्कर में मौजूद बेमारिफत दीनदार लोगों की तरह ना हो जाना, जो बजाहिर दीनदार तो थे लेकिन इतने बेमारिफत थे कि जब दुश्मनों के लश्कर ने धोखा देना चाहा तो ये जाहिल इस्तेमाल हो गए। बैत अली की थी बात अमीर शाम की मान, ऐसा हो जाता। ये सारी तारीख की इबरतें। ऐसे धोखों से बचने के लिए चीजों का मकाम बदल देना, जब हमने किसी से बात करनी है, हमने अपने मकतब का क्या, हमारे मकतब का चेहरा है क्या, क्या पेश करना है दुनिया को, अगर उसको कोई बदल दे जो अल्लाह और रसूल और अहले बैत कहते हैं, उन चीजों को पसे पुश डाल दे और जो हमारे मौलाना साहब कहते हैं उनको फ्रंट पे रख लें। और मौलाना साहब भी कौन से, जो इस वक्त पूरे दुनिया में आलम तशय्यों को लीड कर रहे हैं और दुश्मन के तीर उनको जाके लग रहे हैं, दुश्मन चाहता है कि उनकी तरफ से उनसे काट दे तशय्यों को, जिस तरह एक जमाने में दुश्मन चाहता था कि जो दीन के हकीकी वारिस है अहले बैत उनसे काट दे उम्मत इस्लाम को, बाकी मुसलमानों को। आज भी दुश्मन ये चाहता है कि जो हकीकी पैरोकार है अहले बैत अथार के उस लीडरशिप से काट दे शियों को, और वो ये काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी असल लीडरशिप की बात नहीं सुने और इधर उधर फिरते हुए मौलाना आजाद की बातों में आ जाए, हैफ है हमारी अकलों पर भी और मातम करना चाहिए इस बात। कोई बंदा हमें आकर कहता है जनाब फलान ने ये कहा फलान ने वो कहा, आया हमें इन दो बुजुर्गवार हस्तियों की जुबान समझ में नहीं आ रही। मैं आज आपसे सवाल करता हूँ, आज जो लुबनान में मसलन हिजबुल्ला जिस मकाम पे खड़ी है, अमेरिका जैसी ताकत के साथ टक्कर है उनकी, इसराइल जैसे खबीस और ताकतवर मक्कार के साथ और गासिब के साथ टक्कर है उनकी, आज उस हिजबुल्ला में अहले सुन्नत शामिल है या नहीं? बहुत बड़ी तादाद में अहले सुन्नत हो चुका, हत्ता के मसीह शामिल है हिजबुल्ला में। हिजबुल्ला है कौन, दुश्मन किस नाम से पुकारता है, शिया। आप तवज्जो फरमा रहे हैं, अगर वहां पर शिया सुन्नी फसाद कराने में दुश्मन कामयाब हो जाए, शिया सुन्नी तफरका बढ़ाने में दुश्मन कामयाब हो जाए, तो इसमें तशय्यों की ताकत बढ़ जाएगी या कम हो? कम हो जाएगी। कितना जोर लगाया है अमेरिका ने आयतुल्ला सिस्तानी के खिलाफ, इराक में नारे लगवाए, बैनर्स छपवाए कि आयतुल्ला जो सिस्तानी है ये तो ईरानी है, हम इराकी कौम परस्ती। कितने लोग हैं क़यामत के दिन के जो देखेंगे वो कि उनका बेड़ा घर इसलिए हो गया कि उन्होंने दीन से ज्यादा अपनी कौम को तरजीह दी, दीन बाद में कौम हमारी पहले। पाकिस्तान में भी कई लोग मौजूद। तो इराकी, ये शैतान का हथकंडा है कौमियत भड़काना, जिसे दीन के खिलाफ इस्तेमाल करते। बनू उमैया को भी यही मर्ज था, उनको अपना खानदान بنو ہاشم کا وہ رائیول تھے، نبوت بھی ان کے دلوں کے اندر سے وہ کینہ نہیں نکال سکی جو ان کو نسل در نسل چلا آ رہا تھا بنو ہاشم کے ساتھ، وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے بنو ہاشم سے، اور جب ان کا بس چلا انہوں نے پھر بنو ہاشم سے بدلے لیے. کربلا کیا پتہ نہیں اسلام کا ذائقہ انہوں نے چکھا بھی تھا یا نہیں چکھا تھا، لیکن لبادہ ضرور اوڑا تھا. اور اس اللہ کے نبی کی آل کے ساتھ جس کا احترام کرنا اور جس سے محبت کرنا اللہ کے نبی کی وصیت، صرف شیعہ کتابوں میں نہیں اہل سنت کتابوں میں لا ریب بلا تردید ثابت شدہ یہ وصیت اللہ کے رسول کی، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے ان روشن فرامین کو پاؤں تلے روک دیا، باقی لوگوں کے سامنے عبرت بنانے کے لیے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھا دیا، ان کے تو اسلام میں بھی انسان کو اسلام نظر نہیں آتا، اسلام کے نام پر کوئی اور چیز نظر آتی. یہ کون لوگ قوم پرست؟ اگر یہ فتنہ کرنے والے، آیا دشمن غافل ہے؟ دشمن کو جب باہر محاذوں پر شکست ہو رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ اندر سے ایسا وار کرے شیعوں کو، جو شیعوں کی طاقت کا مرکز ہے مرجعیت کے نام سے، یہ جو مرکز ہے اس مرکز سے شیعوں کو کاٹ دو، اس کے بعد پھر جس کو مرضی مارو، جب یہ کٹ جائیں گے تو پھر کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہوگا. آپ توجہ فرما رہے ہیں، کچھ لوگ ان عظیم شخصیات کے ایجنڈے کو سنتے ہیں، کان دھرتے ہیں کہ ہمیں کیا پالیسی رکھنی ہے، اور کچھ لوگ اس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں جس کو دیکھ کر آج امریکہ اور برطانیہ راضی ہوتا ہے. اپنے گھروں میں جا کے سوچئے گا کیا رویہ اختیار کروں تو دشمن تشیع راضی ہو جائے گا کہ یہ اب ٹھیک ہو رہا ہے، میرے فائدے کا کام ہو رہا ہے، اور کیا رویہ اختیار کروں جس سے آج تشیع کی طاقت بڑھ جائے گی اور شیعہ تو شیعہ اہل سنت بھی آ کر حسینی صفوں کے اندر شریک ہو جائے گا. اربعین کیا ہے؟ وقت تمام ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں. اربعین کیا ہے؟ اربعین بھی یہی، آپ اربعین پہ خیال رکھیں. یہ اللہ نے ایسی عظیم نعمت عطا کی ہے امام حسین کی اس قربانی کے صدقے میں کہ یہ اتنی بڑی تحریک ہے کہ جو انشاءاللہ زمانے کے امام کے ظہور کے ساتھ متصل ہوئی، اور یہ آپ کو سفر کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ عراق کیسے جانا ہے، چونکہ امام کا دارالخلافہ کوفہ میں ہوگا. وسائل فراہم، طریقے سہولتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عراق جانے والوں کو مشکلات پیش نہ آئیں، راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، غیبی طاقتیں راستے ہموار کر رہی ہیں، آپ کے مزاج کے اندر اس سرزمین کو داخل کر رہی ہیں، آپ کو اس سرزمین سے مانوس کر رہی ہیں تاکہ جب وہ وقت آ جائے تو آپ کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو یہ سفر کرنا. آپ اپنی زندگی میں کئی بار یہ سفر کر چکے ہو، اور پھر یاد رکھیے جیسے مکتب اہل بیت ساری انسانیت کے لیے ہے کیونکہ حقیقی اسلام ہے، اسی طرح آپ ہمارا زمانے کا امام ساری بشریت کا امام ہے. ایسا ماحول ہونا چاہیے عراق کی سرزمین پر کہ شیعہ نہیں صرف اہل سنت بھی، دوسرے ادیان سے تعلق رکھنے والے بھی، ان کے دلوں میں بھی جو بھی عدل خواہی رکھتا ہے اپنے دل میں، عدالت کا طلبگار ہے کہ دنیا سے ظلم ختم ہو، ہر وہ بندہ اس سرزمین کی طرف رخ کرے اور اپنے آپ کو امام کے ساتھ متصل کرے. یہ کام، اس کا ماحول فراہم کرنا، اس کے اندر جو خرابیاں دشمن پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ اس تحریک کی عظمت میں کمی آئے، خرافات بیچ میں ڈالنا چاہتا ہے، یہ ذمہ داری وہ ادا کریں گے اس کو صحیح ٹریک پر رکھنے کی جن کے کان اپنی عظیم مرجعیت اور لیڈرشپ کے الفاظ پر لگے ہوئے، ورنہ ہم استعمال ہو جائیں. تاریخ بتاتی ہے کہ اگر ہم سنجیدہ نہ ہو تو پھر حضرت علی سے بڑا لیڈر اس کائنات نے نہیں دیکھنا، اللہ کے نبی کے بعد مولا کائنات سے بڑا لیڈر، ان سے بڑا عالم، ان سے بڑا متقی، ان سے بڑا اسلام کی خدمت کرنے والا جس کو سب جانتے تھے، ان سے بڑا قرآن کا عالم جس کو سب جانتے تھے، ان سے بڑا کون آئے گا؟ کوئی نہیں آ سکتا. ان کو بھی لوگوں نے کس طرح خیانت کی ان کے ساتھ، اور استعمال ہو گئے مکاروں کے ہاتھوں. آج بھی اگر صحیح جگہ ہم نے نہ پہچانی تو استعمال ہو جائیں گے مکاروں کے ہاتھوں. کربلا میں بھی بہت سارے وہ لوگ میدان میں آ گئے تھے کہ جو کچھ دن پہلے امام حسین کے منتظر تھے. توجہ فرما رہے ہیں، میدان کربلا میں آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں مظلومیت امام کو دیکھیں، جو خیانت کی دنیا پرست مزاجوں نے امام حسین کے ساتھ، وہ خیانت کیا تھی کہ امام نے کئی لوگوں کو میدان کربلا میں اشارہ کر کے، خطاب کر کے فرمایا تھا، کیا تو نے مجھے خط لکھ کے نہیں بلایا تھا؟ کیا تو نے مجھے نہیں کہا تھا کہ آپ آئیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے امام، ہم آپ کا لشکر، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور آج جب میں آیا ہوں تو تم میرا ساتھ دینا تو دور کی بات، میرے قتل کا ارادہ کرنے والے لشکر کا حصہ بن کر آ گئے. یہ استعمال ہو جانا عبرت ہے. غم امام حسین عزیزان محترم بہت قیمتی ہے، بہت سارے زاویوں سے قیمتی ہے. امام حسین کی کے مصائب پر گریہ کرنا، ان واقعات کو یاد کر کے، ان حادثات کو یاد کر کے، کتنے کردار ہیں، کتنی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا نام سنتے ہی انسان کا دل پگھل جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب ان کی مظلومیت کا تذکرہ ہوتا ہے. جو جوان تھے، جو بڑی عمر کے تھے، وہ تو بالآخر بڑے تھے، لیکن کربلا کے کرداروں میں تو ایک 4 سال کی معصوم بچی بھی شامل. اللہ نے ان کی قربانیوں کو، ان کے ہونے والے، ان پر ہونے والے مظالم کو وسیلہ بنا دیا کہ یہ جب مظالم سنیں گے تو سخت دلوں والے بھی پگھل جائیں گے اور وہ سوچیں گے کہ یہ قربانی کس لیے دی گئی تھی، کیا جرم تھا حسین کا کہ اس کو، جس کو اللہ کے نبی نے جنت کا سردار بتایا تھا، اس کو بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کیا گیا، اور اس سے تو پتہ نہیں کس جرم کا انتقام لیا گیا، لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ اس کی وہ بچی کہ جو تازہ تازہ یتیم ہوئی تھی، اس کے کانوں سے در چھین لیے گئے، اس کو تماچے مارے گئے، اور وہ اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی. عزاداروں بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا، جب امام حسین رخصت کے لیے آئے، رخصت ہونے لگے، بی بی سکینہ نے جب الوداع کیا، امام حسین اس خیمے میں گئے جس خیمے میں وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، کسی کا بابا شہید ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار شہید ہے، تازہ تازہ یتیمی کا داغ لگا ہے ان کے دلوں پر. بی بی سکینہ اتنی سمجھدار تھی، جب امام حسین اس خیمے میں گئے تو اپنے باپ کے قریب نہیں گئی کہ اگر میرا بابا مجھ سے پیار کرے گا تو شاید وہ بچے جن کے بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے ان کے دلوں کو تکلیف ہو. جب امام حسین الوداع کر کے باہر نکلے تو سکینہ پیچھے پیچھے واپس آئی، ذوالجناح پر امام سوار ہوئے، ذوالجناح کو میدان کی طرف بڑھانا چاہا، لیکن عزاداروں ذوالجناح آگے نہ بڑھا. اب جو مولا نے نیچے نگاہ کی تو 4 سال کی معصوم بچی اس گھوڑے کی ٹھانگوں کے ساتھ لپٹ کر کڑی ہے. سکینہ بابا کو جانے دے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا وقت قریب ہے. بچی کہتی ہے بابا چلے جانا، لیکن ایک بار گھوڑے سے نیچے اتریے. جس طرح مسلم کی بیٹی کو جب خبر ملی تھی کہ اس کے بابا شہید کر دیے گئے، آپ نے بلایا تھا، آگوش میں بٹھایا تھا اور اس سے کہا تھا بیٹی آج کے بعد حسین کو اپنا بابا سمجھنا. اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، شاید سکینہ نے مولا سے یہ کہا ہو، بابا اب جب آپ جا رہے ہیں سب کے جانے کے بعد تو ذرا یہ تو بتا دو کہ آپ کے بعد سکینہ کس کو بابا کہے گی، آپ کے بعد سکینہ کس کے سینے پر سویا کرے گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار قرآن کریم کے صدقے، محمد و آل محمد کے صدقے، کربلا کے مظلوم شہیدوں کے صدقے، بی بی زینب و سید سجاد کے صدقے، جناب سکینہ بنت حسین کے صدقے، پروردگار ہم لوگوں کو
سچا اہل بیت اطہار کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما، سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو تعلیمات محمد و آل محمد اور تعلیمات قرآن سے آشنا فرما۔ پروردگار قرآن کریم و اہل بیت اطہار کے صدقے میں تمام حاضرین فرش عزا کے مرحومین اور بالخصوص ہماری ملت کے شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار اسیران کربلا کا واسطہ، اسیران کربلا کا صدقہ، ہماری ملت کے جو بے گناہ اسیر ہیں جن کو جبری طور پر اغوا کر لیا گیا، گم شدہ کر دیا گیا، اور ان کی بیویوں کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے معصوم بچوں کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ ان کا باپ کس حالت میں ہے۔ پروردگار اسیران کربلا کا صدقہ، ان کی رہائی کی خبر جلد سننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار قرآن و اہل بیت اطہار کے صدقے میں تمام دنیا میں جہاں جہاں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، بالخصوص مسلمانوں پر اور بالخصوص مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، اپنی خصوصی مدد اور نصرت سے ان کی اندھیری رات کو صبح روشن میں تبدیل فرما۔ پروردگار بالخصوص یمن کے مظلوم مسلمانوں کو، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو، اسی طرح شام کے اندر اور فلسطین کے اندر، اسی طرح نائجیریا کے اندر کہ جہاں پر ایک عظیم ہستی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مکتب اہل بیت سے آشنا کرنے والا شیخ ابراہیم زکزکی، پروردگار ان کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار ان کو آزادی کے ساتھ پھر اس مکتب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام دین اسلام کے مکتب اہل بیت کے خدمت گزاروں کو اپنے امام زمانہ کے حقیقی خدمت گزاروں کی طرح اور جو خدمت کر رہے ہیں ان کے صدقے میں ہم بے قصوں کو بھی اور ہم خطا کاروں کو بھی ہمارے امام کے لشکر میں شامل فرما، ان کے خدمت گزاروں میں سے پروردگار ہمارا شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔